आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज इस संध्या के लिए, शाम के लिए। जब कई बार हम परमेश्वर के वचन में कुछ बातों को देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है क्यों हम अर्पण करते हैं, क्यों बच्चों के कलीसिया में अर्पण की जरूरत है, कैसे है। और ये सच है कि बाइबल में अर्पण करने के लिए विशेष रीति से कोई निर्देश नहीं है। ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, बाइबल में बच्चों के अर्पण के लिए कोई ना विधि है ना कोई स्पष्ट निर्देश है। लेकिन हाँ, एक दो उदाहरण हैं जिनको हम देखते हैं। लेकिन इसके पीछे क्यों हमें इन बातों को करना चाहिए, सो आज शाम को थोड़ी देर के लिए कुछ बातों पर हम विचार करेंगे, देखना चाहेंगे कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या सिखाता है। और ये अच्छा है जो माता पिता हैं, मैं खास तौर से उन लोगों से चाहूंगा जो बच्चे बड़े हैं आज, जिनका अर्पण हो रहा, कुछ समझदार बच्चे हैं, उनके माता पिता की ये इच्छा थी। लेकिन माता पिता जो यहाँ पर हैं वो ध्यान से देखें, सुने, समझें, और उसके साथ साथ न केवल लेकिन जो हम माता पिता हैं या आने वाले दिनों में हम प्रभु शायद उस आशीष में ले जाना चाह रहा है, हम सब के लिए ये अवश्य है कि हम इन बातों को सुने, सीखें, जानें और उनका पालन करें। यह अवश्य है। परमेश्वर के वचन केवल हम यहां पर एक रीति विधि को पूरा करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए, लेकिन हम कुछ गंभीरता से इस बात को देखना चाहते हैं। और जब हम, मैंने कहा कि नए नियम में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं जिसका अर्पण किया गया, और पुराने नियम में हम शमूएल के बारे में देखना चाहते हैं, देखते हैं जिसका अर्पण किया गया। दोनों की अलग अलग स्थिति है, परंतु उसके साथ साथ हम ये देखना चाहेंगे कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता। मैं अक्सर ये बोलता हूं, अक्सर मैं कहता हूं कि जब माता पिता यहां पर आते हैं कलीसिया में और वो इस बात को चाहते हैं कि उनके बच्चों का अर्पण किया जाए, तो दो चीजें हैं। ना केवल वे बच्चों का अर्पण करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ना केवल बच्चों का अर्पण करते हैं, लेकिन माता पिता परमेश्वर के सामने, कलीसिया के सामने अपना समर्पण करते हैं, अपना समर्पण करते हैं कि हम किस प्रकार से ये बच्चे के जो आशीष परमेश्वर ने दी है हम उसकी जिम्मेदारी को निभाएंगे, जिसको हम परमेश्वर के वचन में अभी देखेंगे। केवल अर्पण काफी नहीं है, बच्चा तो कुछ नहीं जानता, वो तो छोटा है, और ये जो बच्चों का अर्पण है ये वो भी नहीं है, क्रिस्निंग भी नहीं है, बच्चों का बपतिस्मा भी नहीं है। इस पर जाने का कई कलीसियाओं में क्रिस्निंग होती है, बच्चों का बपतिस्मा होता है, छिड़काव का, वो भी नहीं है। हम छिड़काव के द्वारा या इस प्रकार से प्रार्थना करने द्वारा या अर्पण करने द्वारा उनको क्रिश्चियन नहीं बना रहे, मसीह नहीं बना रहे, ये नहीं है। हमें कुछ बातों को स्पष्ट जाना है। जब मैं बोलता हूं मुझे एकदम से याद आ जाता है थोड़ा सा, एक बार एक पादरी साहब थे और बहुत अच्छा प्रचार करते सब कुछ थे, और उनके पास एक नौकर था, उनके पास एक नौकर था जिसका नाम रामू था, और वो रामू पादरी साहब को देखता था, सुनता था, जाता था, चर्च में भी कभी कभी जाता था। और एक बार उसने जब गया तो देखा कि उस दिन उस कलीसिया में एक कोई श्यामू नाम का एक व्यक्ति था, वो पादरी साहब के सामने आया, पादरी साहब ने कुछ बोला और बोलने के द्वारा कुछ छिड़का, और उसके बाद कहा आज से तू श्यामू नहीं, आज से तू पतरस है, ठीक है, चला गया। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ, पादरी साहब के यहां कुछ मेहमान आने वाले थे, और पादरी साहब ने अपने नौकर से कहा, रामू से कहा, रामू आज चर्च के बाद कुछ लोग आएंगे हमारे यहां और उनके लिए खाना तैयार करना है, तो एक काम करना, तू जाके बाजार से मीट ले आना और मीट बनाना, ठीक है। देखा ठीक है, तो पादरी साहब चर्च चले गए, और पादरी साहब चर्च से वापस आए, मेहमान भी आ गए, और मेहमान आ गए तो जैसे ही खाना खोला गया तो पादरी साहब ने देखा ये तो मीट नहीं है, ये तो मछली है। पादरी साहब गुस्सा गए, पादरी साहब कहने लगे कि मैंने तुझे, रामू तुझे मैंने कहा था कि तू मीट बनाना है, तूने क्या है? कहने लगा पादरी साहब मैं क्या बताऊं, मैं पूरे बाजार में घूमा, और पूरे बाजार में घूमा मैंने देखा कहीं मीट नहीं मिला, तो मैंने मछली ली। मैं उस दिन चर्च में गया था, तो मैंने कुछ देखा था। मैंने देखा था कि आप ने एक व्यक्ति को, उस रामू को कुछ बोला और कुछ करके कुछ छिड़काया, और आपने कहा आज से तू श्यामू नहीं, आज से तू पतरस है, रामू नहीं तू पतरस है। मैं भी मछली लेकर आया और मछली को रखा, मैंने कुछ बोला, पानी छिड़का, और मैंने कहा आज से तू मछली नहीं, तू आज से मीठ है। ऐसी कहानी नहीं है, ये क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं है, मसीह बनाने के लिए नहीं है। हमें अपने आप की इन बातों को समझना है, समझ जरूर। बहुत सारी कलीसियां हैं, बहुत सारा, मेरा भी उसी प्रकार से, मेरे प्रभुभूमि भी वही है कि मेरा छोटा में मुझे बपतिस्मा दिया गया, लिया नहीं था, फिर बाद में कन्फर्मेशन हो जो कुछ हुआ, लेकिन जब मैंने प्रभु को जाना तब मैंने वचन के अनुसार जो काम करना था करा। सो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो कुछ भी आज हम इन बच्चों का अर्पण कर रहे हैं, पहली बात ये, हम इनको क्रिश्चियन नहीं बना रहे हैं, और कोई नाम देने से कोई क्रिश्चियन नहीं बन जाता, लेकिन हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे और माता पिता अपने पर जिम्मेदारी लेंगे कि अब उनको उनके साथ क्या करना है, जिसको हम वचन से कुछ देखेंगे। तो मैंने कहा बाइबल में दो स्थल है, एक नए नियम में, एक पुराने नियम में। लूका उसका दूसरा अध्याय में आइए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, और यहां पर तीन चीजों को हम पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के माता पिता ने उस समय किया। 21 पद में, 8 दिन पूर्ण होने पर जब बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा। पहली बात, वो व्यवस्था में दिया गया था और व्यवस्था उनको पूरा करना था, व्यवस्था के अनुसार वो खतना किया गया क्योंकि अब्राहम के समय में परमेश्वर ने दिया था, ठीक है। अर्थात वो नाम जो उसके गर्भ के में आने से पूर्व स्वर्गदूत द्वारा दिया गया। तो पहले यीशु मसीह की पहली चीज ये की गई। तब दूसरी बात, 22 पद में, मूसा की व्यवस्था के अनुसार जब उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे बालक को यरूशलेम में लाए और उसे प्रभु को अर्पित करें, शुद्ध होने का। दूसरी बात, व्यवस्था में एक और नियम था, संतान होने के बाद किस प्रकार से स्त्रियों को प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, और उस विधि के अनुसार जब आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा जब दिन पूरे हो जाते थे तो शुद्धता के लिए कुछ पेटों को अर्पण करना पड़ता था, चढ़ाना पड़ता था, और तब उसके साथ साथ तीसरी बात उन्होंने यीशु को अर्पण किया। अब हम इस समय जो प्रभु में है, मसीह में, हम व्यवस्था को नहीं पूरा कर रहे, क्योंकि व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दी, व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। एक और स्थल को देखते हैं फिर हम वापिस आएंगे, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय, और तब इन दोनों बातों को समझ करके आगे बढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय, इसकी कहानी आप अच्छी तरह जानते हैं, हन्ना किस प्रकार से, अलकाना उसका प्यार पति, अच्छा पति है, और अब हन्ना के पास संतान नहीं, लेकिन वो रो रो के प्रार्थना करती है और परमेश्वर ने उसको संतान दिया, और जब परमेश्वर उसको संतान देते हैं तो किस प्रकार से, हन्ना 24 पद में, पहला शमूएल पहला अध्याय 24 पद से मैं पढ़ रहा हूं, जब वो उसका दूत छुड़ा चुकी तब वो 3 वर्ष का बछड़ा एक ऐपा आटा तथा एक उपदाक मधु लेकर अपने पुत्र के साथ शिलो में यहोवा के भवन को गई। यद्यपि बालक अभी छोटा ही था, फिर उसने बछड़े की बलि किया और बालक को एली के पास लाया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे प्राण की सौगंध, मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। इसी बालक के लिए मैंने विनती की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, अतः मैंने भी उसे यहोवा को समर्पित कर दिया है, वो जीवन भर के लिए यहोवा को समर्पित है। फिर उस मनुष्य ने यहोवा को वहीं दंडवत किया। तो यहां पर दूसरा स्थल देखते हैं पुराने नियम में। अब हन्ना उस बालक को लेके भवन में जाती है। क्यों? क्योंकि हन्ना ने इस संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की है। उसको कई ऐसे समय से संघर्ष से होकर जाना पड़ा, लंबी कहानी है, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको आशीष दी है और तब आशीष दी तो उस बालक को लेकर वो परमेश्वर के भवन में गई है। तीन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि जब हम बच्चों को अर्पण करते हैं तो माता पिता क्या है, पहली बात प्रश्न है कि हम क्यों ऐसा करते हैं, हम क्यों इस बात को, पहली बात हम इस बात को पहचानते हैं कि ये परमेश्वर की संतान जो है परमेश्वर की आशीष से प्राप्त हुई है। पहली बात हम इस बात को स्वीकार करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं कि हाँ ये परमेश्वर की आशीष से हमें मिला है, परमेश्वर ने इस संतान को हमें दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है वचन संहिता 127:3-5 में, बच्चे यहोवा के देवेदान है, गर्व का फल यहोवा की ओर से है। गर्व का फल यहोवा की ओर से है। सो पहली चीज हम इस बात को पहचानते हैं कि जो संतान हमारे हाथ में हमारी गोद में, ये धन से नहीं है, किसी और चीज से नहीं है, पर परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की एक बहुत बड़ी आशीष है। और जब हम इस बात को पहचानते हैं तो हम उस पद को याद करते हैं जो रोमियो उसके 11 अध्याय उसके 36 पद में लिखा है, सब कुछ परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए उसकी महिमा युगानुग होती रहे। सब कुछ परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए। प्रभु जी ये संतान जो आपने दी है ये आपकी आशीष है, ये आपकी ओर से है, और इसलिए अगर ये आपकी ओर से है तो ये आपके लिए है। इस बात को हम इस बात को सोचते हैं और ये हमारे अंदर ये इच्छा आनी चाहिए। जो माता पिता आज अपने बच्चों का अर्पण करना चाह रहे हैं उनके हृदय में ये बात बार 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 उनके मन में आना है कि ये संतान परमेश्वर ने हमें दी है, क्योंकि परमेश्वर ने ये आशीष अपनी महिमा के लिए दी, उसकी ओर से, उसके द्वारा, उसके लिए। ये बहुत बड़ी बात है। जरूर माता पिता बहुत सोचते हैं, विचारते हैं, बच्चे का जन्म होता है, जमा होने के बाद ही उनके ख्याली ख्वाब बनने लगते हैं, बेटा हुआ है ठीक है मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कई बार पहले ही सोचने लगते हैं, पहली कल्पना करने लगते हैं। इसी प्रकार से एक सज्जन थे, वो सोच रहे थे, बैठे बैठे बड़े परेशान थे और बड़े बड़े परेशान थे और अपने बराने में कूद रहे, मैं अपने लड़के को क्या बनाऊंगा, मैं क्या बनाऊंगा, मैं डॉक्टर बनाऊंगा। थोड़ी देर पर कहने नहीं 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 डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, वो चिड़ फाड़ करेगा। फिर कहने लगे नहीं 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 मैं इंजीनियर बनाऊंगा, नहीं 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 इंजीनियर नहीं बनाऊंगा, वो गाड़ी में आएगा और मेरे को देखा एकदम चला जाएगा, ऐसा करे वैसे सोच रहे थे। उनका मित्र आ गया, मित्र कहने लगे तुम क्या बात हो भाई, क्यों परेशान दिखाई दे रहे हो। वो कहने लगा, मित्र कहने से कहा कि मैं सोच रहा हूं मैं अपने लड़कों को क्या बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, पायलट बनाऊं, आर्मी ऑफिसर बनाऊं, ये बनाऊं, बनाऊं, ये सोच रहा हूं। कहने लगे उसका मित्र ने कहा तुम परेशान क्यों रहे हो, अच्छा बेटे को बुला लाओ, बैठ के उससे बात करते हैं और तो पूछते वो क्या बनना चाहता है। कहने अभी बेटा हुआ नहीं, संतान नहीं हुई है, लेकिन सोचने लगे हैं, सोचने लगे हैं। और जब संतान गोद में आती तब भी बहुत बड़े प्लान बनाने लगते हैं। हम भूल जाते हैं यह संतान परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर के लिए है, हम ये भूल जाते हैं। और हमारे सबसे पहले यह अभिलाषा होनी चाहिए कि यह संतान परमेश्वर ने दी है, परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर के लिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे, सबसे पहली बात। सो जब हम बच्चों के अर्पण की बात सोचते हैं तो माता पिता को मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा, उनका सबसे पहला विचार यह है
ये परमेश्वर ने दिया है और इसको हमें परमेश्वर के लिए तैयार करना है, पहली बात। इसीलिए मैंने कहा कि हम केवल बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं करते, लेकिन हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको सुबुद्धि दे, आपको समझ दे, आपके सहायता करें कि आप अपने जीवन का इस समय में एक स्वयं समर्पण करें, ताकि आप बच्चे की परवरिश इस प्रकार से कर सकें ताकि वो कल बड़ा होकर के बच्चे के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे सके। यह दूसरी बात। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ना केवल ये कि परमेश्वर ने की ओर से हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन और अधिक परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं। अब अन्ना का क्या था, हम मैंने बताया अन्ना के जीवन के बारे में आप बहुत लोग जानते हैं किस प्रकार से अन्ना व्याकुलता में उसने जीवन को व्यतीत किया, कितना उसने आंसू बहाया, कितना सोचा, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको संतान दे दी तो कितनी अधिक वो आनंद से भर गई, और न केवल आनंद से भर गई लेकिन किस प्रकार से वो उस कृतज्ञता को प्रकट कर रही है एली के पास जाकर। एली नहीं समझ रहा है, एली ने पहले भी नहीं समझा। किसी ने कहा जब शमूएल बड़ा हुआ था तो एली परमेश्वर शमूएल को आवाज दे रहा है, क्योंकि अन्ना निरंतर उसके लिए प्रार्थना करती थी, निरंतर अन्ना हर साल उसके पास आती थी, मिलती थी, सब कुछ होता था। उसकी चिंता ये थी कि ये परमेश्वर के भवन में रहकर परमेश्वर के सेवक के साथ मिलकर के वो आगे बढ़े और परमेश्वर के तैयार हो, ये उसकी इच्छा थी। और अब वो बढ़ा था, और जब परमेश्वर एली से बात करने लगा तो वो उठता है, जागता है, एली के पास जाता है, और एली के पास जाकर के वो पूछता है किसने मुझे आवाज दी। किसी ने कहा कि बहुत सारे सेवक ऐसे हैं आज, परमेश्वर लोगों को जगाता है, सेवक सुलाता है। एली कहता था जाके सो जा, एली कहता था जाके सो जा, लेकिन किस प्रकार से हन्ना की प्रार्थना उस बालक शमूएल के साथ जन्म से पहले से लेकर निरंतर बनी रही है, निरंतर बनी रही है, यह कृतज्ञता है। और इसीलिए जब परमेश्वर के भवन में आती है तो क्या कहती है पहले शमूएल में, अभी हमने देखा था लेकिन फिर से हम उसको खोलेंगे, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय, और वो कहती है हे मेरे प्रभु तेरे प्राण की सौगंध, मैं मेरे प्रभु मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास से ही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी, इस बालक के लिए मैंने विनती की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इस बालक के लिए मैंने, ये वही बालक है जिसके लिए मैं बार बार आकर यहां पर आकर प्रार्थना करती थी। एली उस समय नहीं समझ पा रहा था, एली तो सोचता था शायद नशे में, लेकिन हन्ना जानती थी उसके हृदय में वो कृतज्ञता से भरी हुई थी, और इसलिए वो उस कृतज्ञता में होकर वो अपने बेटे को ऐसे समर्पित कर रही है, अर्पण कर रही है, वहां छोड़ दे रही है। अब उसको अपनी चिंता नहीं, वो ये नहीं सोच रही है कि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कई बार माता पिता सोचने लगते हैं, वो अलग विषय है, बच्चों को माता पिता है, माता पिता को बच्चों को देखना वो अलग बात है, लेकिन हन्ना का विचार, हन्ना की इच्छा, हन्ना की अभिलाषा एक ही चीज, वो परमेश्वर के प्रति ना केवल जानती वो आशीष परमेश्वर की ओर से है, लेकिन उस आशीष को पाकर अब उसका मन कृतज्ञता से भरा पड़ा है। हम कितना अधिक परमेश्वर के कृतज्ञ होते हैं, कितना अधिक कृतज्ञ होते हैं। हां थोड़ा बहुत कह दिया, कभी कह दिया, मेहरबानी से ध्यान रखिएगा, कृतज्ञता हमारे शब्दों से नहीं लेकिन हमारे एक्शन से दिखाई देती है। किस प्रकार से हम किसी भी आशीष के लिए परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि अगर एक माता पिता कृतज्ञ हैं तो किस प्रकार से वो बच्चों का लालन पालन करेंगे, किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे अगर परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं। और इसलिए यहां पर
वो आकर अपने उस कृतज्ञता तक मन को उंडेल देती है, प्रकट करती है। तीसरी बात, ना क्यों नहीं लेकिन एक और बात कहते हो, वो कहते हैं ये बालक को जो मैं तूने मुझे दिया है, थोड़े समय के लिए नहीं, आज थोड़ी देर के लिए हम अर्पण कर रहे हैं, उसके बाद फिट्टी जैसा है। वो कह रहा है जीवन भर के लिए उसका एक निर्णय है, उसका एक संकल्प है, उसका एक समर्पण है, ये संतान जो परमेश्वर तूने मुझे दी है ये जीवन भर के लिए तेरी रहेगी, मेरे परिश्रम के द्वारा, मेरे प्रयास के द्वारा, मेरी प्रार्थना के द्वारा, मेरे कार्य के द्वारा ये बालक ये बालिका प्रभु तेरे बन के रहेंगे और तुझ में आगे बढ़ेंगे। वो इस प्रकार के देते हैं, थोड़े समय के लिए नहीं लेकिन हमेशा के लिए। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण। तो तीन बातें मैंने आपके सामने संक्षिप्त में रखी, एक दो बात और कहकर मैं आगे बढ़ूंगा। अब दूसरी बात, कैसे मुझे इनकी परवरिश करनी है। जो बच्चे हमारे गोद में आ गए हैं, जो परमेश्वर ने हमें दे दिए हैं, उसकी आशीष है, उसकी ओर से हमें मिला है, अब एक जिम्मेदारी मिली है। मैं अक्सर बोलता हूं परमेश्वर जब हमें आशीष देता है तो उसके साथ साथ हमारे साथ दो चीज और जोड़ देता है, हमेशा याद रखिए, वो है हमारे साथ जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद ब्लेसिंग गॉड एड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी और जवाबदेही। मैं अकेला था, आप भी अकेले थे, कई लोग हैं, लेकिन केवल आशीष नहीं मिली, अब उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई। वो जिम्मेदारी अब उनकी पत्नी की, उनको देखभाल करना है, और न केवल जिम्मेदार आ गए लेकिन अब उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी आ गई। किसी भी क्षेत्र में हम जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, हमेशा हर आशीष के साथ, हर आशीष के साथ, अगर हम कहते हैं परमेश्वर ने हमें आशीष दी है तो हमें ध्यान रखना है कि उस आशीष के साथ परमेश्वर हमारे साथ साथ उस आशीष के साथ हमें जवाबदेही और उत्तरदायित्व, ये दो चीज जोड़ देता है, और हमें इसके लिए करना पड़ता है। ठीक है, दो जन थे, अब प्रभु से उन्होंने प्रार्थना मांगी कि प्रभु हमें संतान दीजिए, प्रभु ने उनको संतान दी, प्रभु ने आशीषित किया, लेकिन पूछे क्या जिम्मेदारी है या नहीं है, जवाबदेही है नहीं है, किसी भी क्षेत्र में। सो जो यहां माता पिता है, आज आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए यहां पर हैं, कलीसे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए केवल ये बच्चे आशीष नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर ने आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी है और आपके ऊपर एक जवाबदेही दी है, क्योंकि हम सब भंडारी हैं और भंडारी होने के नाते हमें एक दिन परमेश्वर के सामने लेखा देना होगा, लेखा देना होगा। और इसलिए मुझे और आपको यह मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से हम बच्चों की परवरिश करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मनों के बारे में मैं देखता हूं, शिमशोन के माता पिता के बारे में, न्यायियों का 13 अध्याय, और यहां 8वें पद में क्या लिखा है, तब मनो ने यहोवा से विनती की और कहा, हे प्रभु कृपा करके परमेश्वर के उस जन को जिसे तूने भेजा था फिर से हमारे पास भेज कि वो हमें सिखाए कि उस बालक से हमें क्या करना चाहिए जो उत्पन्न होने वाला है। ना वो क्या कह रहा है, तब वो अपनी पति से भी बात करता है आगे जाकर के, कह रहा है कि वो हमें सिखाए कि किस रीति से इस बच्चे को जो हमारे परिवार में आने वाला है हमें कैसे इसकी परवरिश करनी है। वो प्रार्थना कर रहा है। और मेरे प्रियो, जब हम इस बात को कहते हैं आशीष के बारे में, तो हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सारा ला लेना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना,
यहोवा पर भरोसा रखकर सरकार करना तो तेरे लिए सीधा मार निकालेगा। अर्थात हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। प्रभु हमें सिखाइए, हमें बताइए हम किस प्रकार से अपने बच्चे की परवरिश करें। जब बीमार होता है तो हम जरूर प्रार्थना की मांग करते हैं, जब कुछ और परेशानी होती है जरूर प्रार्थना मांगते हैं, लेकिन कितना अधिक हम परमेश्वर से बुद्धि और समझ मांगते हैं। प्रभु हमें सिखाइए कि हम कैसे इस बच्चे की परवरिश कर सके। और ये दोनों का काम है, माता पिता दोनों का काम है, पति पत्नी का दोनों का काम है। कैसे हम उनका मार्गदर्शन करें, कैसे उनको आगे बढ़ाएं, किस रीति से उनको शिक्षा दें, कौन सी चीज है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, माफ कीजिएगा, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, खासतौर से जो हमारे वो लोग परिवार के लोग, माफ कीजिएगा भाई लोग जो हिंदू परिवार के पृष्ठभूमि से आए हैं, उनको ध्यान रखना है, बहुत गंभीर बात है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई परमेश्वर धागा बांध कर नहीं भेजता, गले में, कमर में, हाथ में। अगर कोई बच्चा यहां पर डेडिकेशन के लिए आया है और माता पिता लाए हैं, और अगर आपने कमर में कोई धागा बांधा हुआ, मेहरबान से पहले काट दीजिएगा। एक बार एक जन यहां पर लेकर आ गए, चाहते थे, मैंने हाथ जोड़ के मना करा, भाई देशज यहां पर है, गवाह है। उनको बहुत बुरा लगा, यहां पर बंदा, यहां पर बंदा, यहां। हमने पहले हम काटेंगे तब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर कभी किसी को बांध कर नहीं भेजता। जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम यहां बांध देते हैं, हम यहां बांध देते हैं, यहां बंध, हम बांधते हैं उसको। परमेश्वर ने आजाद भेजा, हमने बांध दिया। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, सीखना हमें, सीखना हमें, हम परमेश्वर के आराधक हैं, उसकी आशीष है, वो देने वाला है, वो संभालने वाला है। इसीलिए हमें प्रार्थना की जरूरत है, प्रभु हमें बुद्धि दीजिए, हमें समझ दीजिए, हमारी सहायता कीजिए। हम कुछ नहीं जानते कैसे हम बच्चे की परवरिश करें, कैसे हम सिखाएं। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बुद्धि मांगिए परमेश्वर दे दिया। तो पहली बात, प्रार्थना की आवश्यकता है, परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है, परमेश्वर कहता है, और बुद्धि से घर बनाया जाता है और समझ के द्वारा स्थिर रहता है। बुद्धि से घर बनाता है, बुद्धि यहोवा का भय माना बुद्धि का आराम है, नीति वचन में भरा हुआ है। यहोवा का भय माना बुद्धि का आराम है। तीसरी बात, हमें अपने स्वयं के आदर्श को उनके सामने रखना है। अगर आप घर में प्रार्थना नहीं करते, आप कभी भी नहीं सोचेंगे कि आपके बच्चे भी प्रार्थना करने वाले होंगे। अगर आप बाइबल नहीं खोलते, कभी भी आपके बच्चे बाइबल को नहीं जानेंगे। माफ कीजिए मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। पिछले दिनों मुझे प्रभु ने एक मौका दिया एक जगह सेवा करने का, मेरी आदत कुछ खराब है, और पहले शाम को मीटिंग थी, काफी लोग थे, बच्चे बहुत थे, यूथ बहुत थे, बहुत सारे यूथ थे, और चले आ रहे हैं, गीत गाए सब कुछ है, लेकिन किसी यूथ के हाथ में बाइबल नहीं। पहली मीटिंग थी मेरी, पहले मैं खड़ा हुआ, मैंने बोला वहां पर, बहुत अच्छा ये जवान बच्चे यहां पर गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है किसी के हाथ में बाइबल नहीं है। मैंने कहा, अक्सर मैं बोलता हूं लोगों से, मैं टिकट बुक करा के जाता हूं, वापस भेज दी, कोई बात नहीं। दूसरे दिन मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं, और तब एक डॉक्टर ने मैं अपने घर में बुला लिया, और तब वो कहने लगे कि हमारी 3 साल की बच्ची जब आपने बोला उसके बाद आके वो हमारे पीछे पड़ गई कि बाइबल दीजिए तब मैं चढ़ जाऊंगी। 3 साल की बच्ची, और उन्होंने उसको बाइबल लेके दी। आप बर्थडे मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब आप उसके हाथ में बाइबल पकड़ाते हैं, कब आप उसके हाथ में वो आत्मिक चीजें देते हैं जो उसको चाहिए। सब कुछ करना है, कपड़े बनाइए, पढ़ाइए, बर्थडे मनाइए, खुशी मनाइए, कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ कर रहे हैं लेकिन जो कुछ करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं तो सबसे बड़ी भयंकर बात है। और इसलिए हो सकता है ऐसे ही बच्चे बड़े होंगे, हो सकता है वो किताब खराब कर दे, स्कूल भी किताब खराब करते हैं, आपको लेकर आनी पड़ती है, कॉपी भी खराब करते हैं लेकर आते हैं, लेकिन अगर उनके हाथ में उस समय में वो आप ले देंगे, ये माता पिता, और माता पिता को भी उनके सामने बाइबल पढ़ना है, माता पिता को उनके सामने दुआ करना है। अगर आप उनके सामने घुटने नहीं टेकते, वो कभी घुटने नहीं टेकना सीखेंगे, कभी नहीं सीखेंगे। क्यों? सुलेमान ये कहता है नीति वचन उसके चार अध्याय में, नीति वचन 4:3, जब मैं अपने पिता के सामने छोटा और अपनी माता की दृष्टि में अकेला दुरा था, तब उसने शिक्षा देकर कहा, तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे, मेरी आज्ञाओं का पालन कर और जीवित रहे, बुद्धि को प्राप्त कर समझ को भी प्राप्त करे। जब मैं छोटा था, बालक था, दुलारा था, तीन शब्द है, छोटा था, बालक था, दुलारा था, हमारे बच्चे हमारे दुलारे होते हैं। उस समय में उसको शिक्षा दी गई, उसको शिक्षा दी गई, उस समय उसे शिक्षा दी और उसे संभाला और किस रीति से वो आगे बढ़ गया। मेरे प्रियो, अपने जीवन का आदर्श उनके सामने रखिए। कई बार हम क्या कहते हैं, घर में बैठे रहते अंदर, बच्चों से कहते हैं, बेटा अंकल आएंगे तो बोल देना कि पापा नहीं है घर में। अंकल आते पूछते हैं, बेटा पापा हैं? पापा ने कहा है, अंकल से कह देना पापा नहीं है। क्या सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमें अपना आदर्श रखना है, और जब हम उस तरह से अपने आदर्श को लेकर चलते हैं तो सचमुच में बहुत सारे और भी उदाहरण हैं बाइबल में। परमेश्वर हमारे बच्चों को अद्भुत आशीष देना मांगता है, और सबसे अद्भुत आशीष धन संपत्ति वैभव की नहीं है, धन संपत्ति वैभव की नहीं है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, और इसलिए भजन संहिता 25 कहता है, भजन संहिता 25:12-13 पद में बहुत सुंदर पद है। भजन संहिता 25 को आप पढ़ेंगे, कौन है जो यहोवा का भय मानता है, कौन है जो भाई यहोवा का भय मानता है, और तब वो कहता है कि परमेश्वर उनके वंशज को उत्तराधिकारी बनाएगा, परमेश्वर उनके वंशज को उत्तराधिकारी बनाएगा। क्या उत्तराधिकारी बनाएगा? मतलब वो जहां पर उनके माता पिता परमेश्वर के राज में प्रवेश कर रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हीं के पीछे पीछे वो भी वहां जाएंगे। कितनी सुंदर आशीष है। भजन संहिता 25 पर, वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है, उसे यहोवा उस मार्ग की शिक्षा देगा जो उसे चुनना चाहिए, उसका प्राण कुशल से रहेगा और उसके वंशज पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। उत्तराधिकारी होंगे, इससे बड़ी आशीष और कोई नहीं है कि हमारे बच्चे संसार में शैतान के हाथों से बचे रहें, संसार के चुंगल से बचे रहें। सब कुछ हो जाए लेकिन अगर संसार में चले जाएं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, बजाय इसके कि संसार में संघर्ष हो, कठिनाइयों, समस्याओं, लेकिन वो प्रभु को प्यार करते हुए आगे बढ़ते जाएं, और हो सके प्रभु उनकी अगुवाई करे तो कल वो प्रभु की सेवा में आ जाएं। और मालूम है परमेश्वर की आशीष कितनी बड़ी जो सेवा करते हैं, जो सच्चाई से समर्पण के साथ अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते सेवा के लिए। यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसके 24:25-26 पद में लिखा है, कहता है जो मेरी सेवा करेगा जहां मैं हूं वो वहां रहेगा और मेरा पिता उसे आशीषित और सम्मानित करेगा। पढ़ लीजिए बाद में यूहन्ना उसका 12 अध्याय 24 पद में लिखा है, जब तक ये गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है, और तब उसके बाद वो 25:26 पद में कहता है जो मेरी सेवा करेगा जहां मेरा पिता है वो वहां रहेगा। कितना सुंदर बात है, यह है सबसे बड़ी चाहना। और जब आज मेरे भाई और बहन आप अपने बच्चों को प्रभु के सामने ला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करिए, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, प्रोत्साहित करना चाहूंगा, आज से ही आप प्रार्थना करने लगी है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और यह मत सोचिए कि प्रार्थना आपकी तुरंत मिले, हो सकता है कितने प्रभु के एक ऐसे सेवक रहे जिनके माता पिता ने बहुत प्रार्थना की, डीएल मूडी उनकी प्रार्थना, मां प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही, लेकिन कि मेरा बेटा प्रभु की सेवा में आ जाए, पर जब उसकी आंख बंद हो गई उसकी मां, तब उसके बाद डीएल मूडी प्रभु की सेवा में आया, और उतने कितना बार प्रभु का काम किया। बहुत सारे ऐसे लोग प्रभु का सहायता करें। सो आज जब आप बच्चों को समर्पित कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, तो मैं कहना चाह रहा हूं आप केवल बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करा रहे, आप अपने आप को परमेश्वर के सामने, कलीसिया के सामने अपने आप को समर्पित कर रहे हैं और एक जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम इन बच्चों को जो परमेश्वर ने आशीष के रूप में दिया है, इनके प्रति हम उत्तरदायित्व हैं, हम इनके प्रति हम जिम्मेदार हैं और हम वो जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने हमें दी है उसको पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प है, समर्पित है। ये परमेश्वर की आशीष होगी। प्रभु सहायता करें, काश प्रभु इस वचन पर आश्रित है और समझ प्रदान करें।